एस पी एस रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। कहानी को अगर किसी परिभाषा में बांधें तो ये उपन्यास का एक सूक्ष्म या सूक्ष्मतम रूप है। उपन्यास के पल पल के विस्तार के विपरीत इसमें लेखक का उद्देश्य रहता है जीवन के किसी एक मनोभाव को उजागर करना। कहानी केवल यथार्थ का चित्रण ही नहीं करती बल्कि उसमें एक दृष्टिकोण भी है। साहित्य के अथाह सागर में अनगिनत कथा मोती हैं, तो आज कथा सागर की श्रृंखला में सुनिए कहानी काश की रेडियो प्रस्तुति। शांत झील के पानी में आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। हल्के से हवा का झोंका आता तो यूं लगता कि पेड़ों की टहनियां बाहें फैलाए एक दूसरे को अपने में समेटने को आतुर हो रही हूं, जैसे एक ललक भरा आमंत्रण भेज रही हूं। इस अद्भुत मनोहरी दृश्य भरी झील के किनारे कुछ ऊंचाई पर इरा और सुहेल सर झुकाए चुप बैठे थे। इरा ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर पानी में फेंका, पानी पर कई गोले बनाती हुई तरंगें बन गईं। इरा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, उन तरंगों को देखा? हाँ, उसी तरह सर झुकाए सुहेल ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो उधर देख रहे थे। हाँ, सही कहा, मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। उंगली की अंगूठी को एक टक देखते हुए इरा बोल पड़ी, इट हर्ट्स अगर हम थिंग्स डोंट ऑलवेज फॉल नीटली। इरा की बात को काटते हुए सुहेल बोल पड़ा, काश। कितनी ही देर तक वो दोनों एक दूसरे के हाथों को लिए खामोश बैठे रहे। एक अजीब सा सुकून मिल रहा था दोनों को उस खामोश पल में। काश ये पल यहीं रुक जाए, एक हूक से उठी दोनों के मन में। वो कब अपनी यादों के घोड़ों पर सवार एक साल पीछे चले गए थे, इससे दोनों ही अनजान थे। सुहेल, तुम्हारे पाकिस्तान में रात को तारे दिखाई देते हैं क्या? इतने पोल्यूशन में वहाँ क्या खाक दिखाई देंगे तारे? आई नो, दिल्ली में भी यही हाल है। हमारे देशों में तो सब जगह यही मसला है। आसमान तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। हवा में ठंडापन महसूस हो रहा था। एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़े बेंच पर बैठे इरा और सुहेल एक दूसरे के करीब आ गए। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? इरा ने इठला कर पूछा। सुहेल थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर बोला, शायर की जुबानी कहूँ तो मेरी प्यारी इरा मैडम, मैं तुम्हारे लिए इन तारों को तोड़कर ला सकता हूँ। अरे बाबा नहीं, अगर तुम वो सारे तारे तोड़ लाए तो आसमान कितना बोरिंग हो जाएगा, और बेचारे चांद का क्या होगा, वो तो अकेला ही हो जाएगा। ना ना, मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। खुदा के लिए ये भारी भरकम लफ्ज निर्दयी वगैरह मेरे साथ नहीं प्लीज, सुहेल ने हाथ जोड़ते हुए जैसे हथियार ही डाल दिए थे। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से उठकर चलने लगे तो सुहेल का पांव जमीन पर पड़ी एक शाखा पर पड़ गया। सॉरी सॉरी, सुहेल उस शाखा से यूं बोला मानो किसी जीव पर पांव रख दिया हो। इरा को हैरानी से देखते हुए सुहेल बोला, पापा का कहना है कि पौधे हमारा टच महसूस कर सकते हैं, वो तो अक्सर पौधों से बातें भी करते हैं, उन्हें सहलाते हैं। ही इज डिफरेंट। इरा को सुहेल की ये बात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं उदासी छा गई। विश मेरे पास भी पापा की कोई बात बताने वाली होती। इरा के पास अपने पापा को लेकर कुछ बहुत याद नहीं था। 5 साल की थी जब उसके पापा मेजर आनंद थापर कारगिल में हुए युद्ध की भेंट चढ़ गए। धुंधली सी याद है कि वो मम्मी के साथ राष्ट्रपति भवन गई थी, पापा को सम्मानित किया गया था वीर चक्र से। मम्मी ने बताया था कि पापा ने सीमा पर वीर गति प्राप्त की थी। वैसे उसने और सुहेल ने तय किया है कि वो लड़ाई की बातें करके मन खराब नहीं करेंगे। सुहेल ने इरा का दुख महसूस किया, उसका हाथ हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी आई डिडंट मीन दैट। पापा की नहीं तो क्या, तुम्हारे पास अपनी मम्मी की तो बहुत सी बातें हैं बताने को। उसने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की और कहा, बिग सलूट टू योर डैड। भाई हम भी तो एक फौजी की औलाद हैं, हमें आता है फौजियों को सलाम करना। सुहेल की बात सुनकर इरा को उस पर बहुत प्यार आया। कुछ हिटला कर बोली, यस मेरे पापा डिजर्व्स इट फ्रॉम यू। होप इतिहास में वो कारगिल वॉर हमारी आखिरी लड़ाई ही रहे। आमीन, सुहेल ने दुआ की। दोनों ही अपनी बातों पर मुस्कुरा उठे। इस प्रणय और मनुहार के पलों में दोनों के बीच ना तो धर्म की दीवार थी और ना ही उनके अपने देशों की सीमाएं। वो सीमाएं जो कभी एक थी लेकिन धर्म के नाम पर हुए बंटवारे के कारण एक से दो हो गई थी। 2 साल पहले यूनिवर्सिटी के एक साझा चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। इरा भारत से मेलबर्न आकर मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी और सुहेल पाकिस्तान से आया था और MBA कर रहा था। यूं उनकी यूनिवर्सिटीज तो अलग अलग थीं लेकिन फिर भी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। कब खुद भरी बातें गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। खाने पीने की आदतें उनके बीच आड़े नहीं आती बल्कि कई बार अच्छा खासा माहौल बन जाता था छेड़खाने का। देखो सुहेल एक बात तो तय है, मैं नॉन वेज नहीं खा सकती, मैंने कोशिश की बट सॉरी। तो मेरे लिए तुम खाना कैसे बनाओगी? मैं क्या, बल्कि मेरे घर में तो सभी नॉन वेज खाते हैं। मैं और खाना बनाना, दफा हो खुद बना लेना अगर नॉन वेज खाना हो तो। ठीक है बना लूंगा, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा, हर तरह का खाना बना दूंगा। ये हुई ना बात, गुड। सुहेल अपने हथियार डाल देता और इरा भी अपनी जीत का ऐलान कर देती। हंसी खुशी समय कट रहा था लेकिन इरा की सहेली निशा उनकी इस दोस्ती और प्यार को लेकर चिंतित रहती थी। उसे लगता कि दोनों के परिवार कभी भी इस बंधन के लिए तैयार नहीं होंगे। और एक दिन उसने इरा से कहा भी कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। क्यों? जब अगले साल तुम दोनों की डिग्री पूरी हो जाएगी तो तुम वापस भारत और सुहेल पाकिस्तान चला जाएगा, राइट? करेक्ट, लेकिन थोड़ी देर के लिए, विजिट के लिए, और हमने तय किया है कि हम यहीं सेटल होंगे। कहते कहते इरा ने अपनी अंगूठी दिखाई। सीरियसली आर यू एंगेज्ड? नहीं नहीं, ये एक प्रॉमिस रिंग है, सुहेल ने कल दी थी एक प्रॉमिस कि हम अपनी डिग्रीज के बाद सगाई करेंगे, शादी करेंगे और सबको दिखा देंगे कि हम अलग अलग धर्म और मुल्क के लोग कैसे प्यार से रह सकते हैं। ओ हेलो, टेलीसोप है क्या ये? कम ऑन बी रियलिस्टिक। निशा को इरा की बात पर थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था और इधर इरा इटलाते हुए बड़े ही गर्व से अपना लॉकेट दिखाने लगी जिस पर ओम और अल्लाह का चिन्ह बना हुआ था। निशा को इरा के लिए चिंता हो रही थी। देखो इरा, ये धर्म के बारे में नहीं है, वो पाकिस्तानी है और तुम भारतीय है, तो क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ। इरा जानती थी कि निशा का आशय किस बात से है, इसीलिए फौरन बोली, जानती हूँ। 1947 में मैंने अपने नाना जी को खो दिया, 71 वॉर में मेरे इकलौते मामा भी चले गए और 99 कारगिल में मेरे पापा। हमारे दोनों देशों के बीच दुश्मनी का इतिहास है वगैरह वगैरह, लेकिन माँ से मेरी बात हो गई है, उन्होंने हामी भर दी है और सुहेल के पेरेंट्स को भी एतराज नहीं है। मुझे लग रहा है तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो, निशा अब भी आश्वस्त नहीं थी। लव में नो सोचना, मैं और सुहेल जानते हैं कि क्रिकेट के अलावा हम किसी और बात पर झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर कभी दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया तो। ये कैसा बेहुदा सवाल है, इरा सकपक आ गई और कुछ देर चुप रहकर बोली, मैं जानती हूं कि प्रेम सारी सीमाओं को लांघ जाता है, लेकिन तुम्हारा दिल कहां होगा, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? इससे पहले कि इरा कुछ कह पाती सुहेल वहां आ चुका था और निशा की ये बात उसने सुन ली थी। निशा फिक्र मत करो, युद्ध धर्म कुछ भी हमें बॉदर नहीं करेगा। झील के किनारे बैठे इरा और सुहेल को जोर जोर से आती हंसी की आवाज ने जैसे वर्तमान के धरातल पर ना पटका। हमारी पूरी दुनिया बिखर गई। ये सब क्या हो गया? अचानक ही सुहेल ने कहा, हम कहाँ गलत हो गए? क्या हम अपनी ही दुनिया के एक कैदी बन गए हैं? शायद यही सच है, इरा बुदबुदाई। इससे पहले हमने इस पर बात क्यों नहीं की? उसने सुहेल से पूछा। यही बात तो बार बार मेरे जहन में भी आ रही है, खुदा ने यह कैसा इम्तहान लिया। एंड वी फेल्ड, अस्पष्ट शब्दों में इरा ने कहा। शायद एक खामोशी ने उन दोनों के बीच पांव पसार लिए थे। इरा सोच रही थी कि अगर उस दिन सुहेल से मिलने वो उसके अपार्टमेंट में नहीं जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या वो कभी स्थिति को स्वीकार कर पाती? और माँ को क्या मुंह दिखाती? पता नहीं भगवान ने ये रास्ता दिखाया है या उसकी कोई परीक्षा ली। जो भी है, उसने एक निर्णय लिया है जो बिल्कुल सही है और उसे अपने निर्णय पर कोई गिला भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों। रोकते रोकते भी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। समझ नहीं आ रहा था कि ये आंसू किस लिए बह रहे हैं। कितनी खुश थी उस दिन जब सुहेल ने फोन करके बताया था कि खास उसके लिए सुहेल के पेरेंट्स ने एक तोहफा भेजा है। पार्सल में सुहेल के लिए तो बस एक ही शर्ट थी और इरा के लिए नए फैशन के 3 जोड़े। फोन पर ही सुहेल को कितना तंग किया था ये कहकर कि अब उसके पेरेंट्स इरा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उस दिन वो सुहेल के घर में थी। सुहेल किचन में चाय का इंतजाम करने लगा। चाय की प्रतीक्षा में जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक फोटो फ्रेम पर उसकी नजर टिक गई। अंकल की है ना, आई मीन योर डैड, राइट? हाँ, कारगिल के टाइम की एक अखबार की कटिंग थी, मैंने फ्रेम करा ली, डैड को मेडल मिला था ना। तभी सुहेल का फोन बजा। इधर फोटो फ्रेम में लगी तस्वीर के नीचे जो लिखा था, इरा का चेहरा उसे देखते ही पीला पड़ गया। फ्रेम में उस अखबार की कटिंग पर लिखा था, मेजर आसिफ खान ने अकेले ही दुश्मन के मेजर आनंद थापर को मार गिराया और चौकी बचाई। इरा की आंखों के सामने मेजर आनंद थापर नाम बड़ा होते होते एक चक्कर में घूमता जा रहा था और उधर फोन पर बात करते समय सुहेल हंस रहा था। इधर इरा निस्तब्ध खड़ी थी, आंखों के सामने गटमट कुछ तस्वीरें, कुछ आवाजें गूंजने लगी। माँ के साथ राष्ट्रपति भवन में मेजर आनंद थापर को मरणोपरांत वीर चक्र। इरा फटी फटी आंखों से देख रही थी, कब उसे चक्कर आया कुछ पता नहीं। दूर आसमान पर नजर गड़ाए इरा और सुहेल अपने में ही कुम बैठे थे। दोनों ही अपने अंदर के तूफान को झेल रहे थे। इरा ने अपनी अंगूठी उतारी, कुछ देर देखती रही, फिर बिना कुछ कहे एक निश्वास के साथ सुहेल के हाथों पर रख दी। सुहेल क्या कहता? एक लंबी गहरी सांस भरकर रह गया। इरा अपने में गुम थी, कुछ अस्पष्ट से शब्द सुनाई दिए। पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, बस एक छोटा सा छेद हो जाए तो सारा पानी बह जाता है। सुहेल ने आह भरी। हमारे पास ताकतें हैं, अपने अपने दुश्मनों से जीत सकते हैं, लेकिन क्या हम सच में जीतते हैं? काश युद्ध हमारे जीवन में ना आता, इरा कह रही थी। काश अंग्रेजों ने भारत पर शासन ही नहीं किया होता तो बंटवारा भी नहीं होता। सुहेल जैसे अपने दोनों के मन की बात पूरी कर रहा था। एक बार फिर खामोशी छा गई। गुमसुम से इरा और सुहेल आसमान को तकते अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। सब कुछ तहस नहस हो रहा था। सच है, कब्रिस्तान पर महल नहीं खड़े किए जाते। एक युद्ध जो हुआ तो था कुछ दशक पहले, लेकिन उसने उनके प्यार की महल की नींव को हिला दिया था। रात के अंधेरे ने अपनी चादर फैला दी। दोनों ही खामोशी से उठे और बिना कुछ कहे कुछ दूर साथ चलते रहे। एक मोड़ पर आकर ठहर गए क्योंकि उनकी राहें अलग हो रही थीं। एक समझी बूझी खामोशी के साथ बोझिल कदमों से वो एक दूसरे से दूर होते गए। काश वो कारगिल का युद्ध ना हुआ होता। काश।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।